शांति। तो आज का हमारा विषय है सुख दुख का कारण मन की वृत्ति, और इसकी प्रेरणा तो रात का प्रश्न उत्तर का सेशन रहा, क्योंकि आप में से किसी एक ने ये प्रश्न पूछा। और वैसे भी आज की हमारी जो ईश्वरीय महावाक्य थे सुबह के मुरली, उसमें भी बाबा ने मीठे बच्चों से क्या कहा, दुख के घाट से निकलकर कहाँ जाना है, शांति धाम सुख धाम में। तो आज की मुरली से भी सेट हो जाता है आज का टॉपिक। तो इसकी शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगी जिसको कहते हैं सुखी व्यक्ति की कमीज। कहानी का टाइटल है सुखी व्यक्ति की कमीज। सुनिए ये कहानी किसी ने। एक राजा था जिसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन बाहर से भौतिक रूप से जितनी ही सुख सुविधाएं थी उतना ही भीतर से चित्त में प्रसन्नता गुम थी, जिस कारण से भीतर से काफी खिन्न रहता था और जिस कारण से स्वयं को बीमार बीमार भी अनुभव करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। तो अपनी मनोदशा उसने दरबार में अपने मंत्रियों के सामने भी शेयर की और मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श करके राजगुरु के सामने बात रखी। राजगुरु ने कहा ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई, मैं आता हूँ राजा से मिलने। गया राजा के पास मिलने और कहता है राजन, मुझे जो आपकी बात पता चली है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी बात है और उसका बहुत आसान सा उपाय है। राजा कहते अच्छा, मैं कितने समय से इसके उपाय के लिए खोज रहा हूँ, कोई नहीं मिल रहा, आप कह रहे कि आसान सा उपाय है। कहते हाँ आसान उपाय है, तो बताइए जल्दी से क्या आसान उपाय है। तो कहता है बस आपको एक ही काम करना है, किसी एक सुखी व्यक्ति की कमीज मंगवा कर आपको एक रात पहनकर सोना है। वो कमीज से उस सुखी व्यक्ति की एनर्जी आपको ट्रांसफर होगी और आप सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा को बात जच गई, ये तो बहुत सचमुच सस्ता उपाय है। तो राजा तो है, सैनिकों को भेज दिया गांव की तरफ कि जो भी आपको सुखी व्यक्ति दिखाई पड़े उसकी कमीज लेकर आ जाओ। हर दिशा में सैनिकों को भेज दिया गया, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई नहीं लौटा है। लौटा तो क्या, वो कोई लौटने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि लौटेंगे बिना कमीज के तो राजा तो हमारी पनिशमेंट लगा देगा, तो लौटने की भी हिम्मत नहीं। तो लगे रहे देखते रहे कि आखिर कोई सुखी व्यक्ति मिल जाए। जितना ढूंढते उतना ही दुखी दुखी व्यक्ति मिलता जाता उनको। एक बार क्या हुआ, ऐसे जाते 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 देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई बैलगाड़ी है और वहां पर कोई एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके मुख से उद्गार निकल रहा है, हे ईश्वर, तूने मुझे जैसा सुखी बनाया है ऐसे संसार के हर व्यक्ति को सुखी बना दो। संसार का हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति दुख से मुक्त रहे, हर व्यक्ति बीमारी से मुक्त रहे, हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने। तो ये जो आवाज उनको आ रही थी, का ये सुखी व्यक्ति की तो आवाज है। जाते हैं उसके करीब और पूछते हैं उसको, तो उसके करीब गया और उसको कहता है, हे भले मानस, आप सुखी हैं? कहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरी स्थिति आपको नहीं बता रही है मैं सुखी हूं? मेरे बैल भी भोजन करके विश्राम कर रहे हैं, मैं भी विश्राम कर रहा हूं, एक सुखप्रद स्थिति है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, आप सच में कंफर्मेशन कर रहे हैं? नहीं, कंप्यूटर में हम कंफर्म करते ना, पास होना कंफर्म करता है। तो इनके कंफर्मेशन का कारण है क्योंकि इनको क्या चाहिए, सुखी व्यक्ति की कमीज चाहिए, टी शर्ट। कहते, भले मानस, आप सचमुच में सुखी है? कहते हैं, हाँ मैं सचमुच में सुखी हूं। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत क्या है? तो आप सब कुछ तो आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है, उसके बाद भी आप क्यों पूछ रहे? कहते, लेकिन आपके पास कमीज तो नहीं है। हाँ? कहा, कमीज नहीं है तो इससे क्या कनेक्शन? कहा, नहीं, हमें कहा गया है कि सुखी व्यक्ति की कमीज राजा को जरूरत है और हम उसकी तलाश में ही यहाँ पर घूम रहे हैं और आप तक पहुंचे हैं आपकी सुख भरी आवाज को सुनकर। लेकिन आपके पास कमीज तो नहीं है, तो फिर राजा को, क्योंकि राजा रिपोर्टिंग तो करते हैं ना, अपने क्या कहते हैं उसको, संवाददाता तो रखते हैं ना, तो आखिर पता किया और ये मैसेज गया कि एक सुखी व्यक्ति मिला है जरूर, परंतु उसके पास कोई कमीज नहीं है। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को ही लेकर आ जाइए। फिर ये इस भले मानस से रिक्वेस्ट करते हैं, राजा ने आपको, हमें कहा है कि हम आपको दरबार में पेश करें, तो आप हमारे साथ चलिए। कहते, मुझे राजा की जरूरत नहीं, जिसको जरूरत है वो आए। फिर वो राजा को बताते कि भला मानस तो ये जवाब दे रहा है। तो फिर कहता है, ठीक है, मैं ही आता हूं। तो पूरी लश्कर लेकर वो आता है और एकदम उसके पास नहीं आता, एक स्थान होता है ना जहां राजा के ठहरता है, और मैसेज भिजवाता है। तो उसको बताया जाता है कि राजा आ गए, अब तो चलिए। कब, मुझे थोड़ी जरूरत है, जिसको जरूरत है वो आवे ना मेरे पास। तो राजा को फिर ये बताया गया, राजा ने उस बात को समझा और तीसरी बार वो खुद उतरकर उसके पास आया। और जब उसके पास उतरकर आया तो उसका कहता है, क्या आप मेरी पीठ खुजला सकते हैं? क्या आप मेरी पीठ खुजला सकते हैं? और वो उसकी सचमुच खुजलाने लग गया। और इसने भले मानस ने, बस 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 राजा रुक जाइए, रुक जाइए, जरूरत नहीं है इसकी, कहा राजा ने कि हे भले मानस, उसने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए था बताओ? तो कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसके पास हजारों कमीजें हैं वो सुखी नहीं है, और जिसके पास, आप जिसके पास एक भी कमीज नहीं है, आप ऐसे कैसे सुखी हैं? क्या है सुखी होने का राज? तो भला मानस कहता है, राजन, सुखी होने के लिए कमीजें पहननी नहीं होती है, पहनी हुई कमीजें उतारनी होती है। क्योंकि सुख कमीजों में नहीं है, सुख तो निज आत्मा में है, निज आत्मा स्वयं सत चित आनंद स्वरूप है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी कमीजें चढ़ी हुई है। बस उसको आप उतार दो और आप भीतर की प्रसन्नता को प्राप्त कर लोगे। जिसने भी यह प्रश्न पूछा था, थोड़ा सा हिंट मिल गया है वो भाई जिसने प्रश्न पूछा था? हाँ, नहीं, दूसरे भाई थे जिन्होंने पूछा था। कौन है? खड़े हो जाओ। जिसने ये पूछा था कि सुख दुख क्या अंतर मन में होते हैं, आए नहीं है? हाँ, चलो, जो भी कारण बना हो, नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी हिंट मिली, कुछ मिली, कुछ तो भी हिंट। हाँ, हम आगे स्पष्ट करेंगे, पर हिंट थोड़ी बहुत मिली आपको, क्योंकि प्रश्न क्या था कि क्या सुख दुख हमारे मन के कारण ही है, ये प्रश्न था ना। और वहां से प्रेरणा आई कि चलो इसी को क्लास रूप में हम ले लेते हैं। राजा को क्यों उसने कहा खुजलाने के लिए? क्यों कहा कि उसको जरूरत है, वो आए, मुझे जरूरत नहीं है? और जब राजा ने सबको स्वीकार किया, तब उसको राज पता चला, ये आवरण है अहम के। समझ में आ रही है बातें? जब वो डाउन टू अर्थ हुआ, डाउन टू अर्थ हुआ, तो संवाद भी एस्टेब्लिश हुआ दोनों का, और सुखी होने का राज भी पता चला। ये जो जो आवरण हमने पहन रखे हैं, कल एक क्वेश्चन के आंसर में बहन जी बता रही थी, डिस्ट्रैक्शन, तीन चीजें हैं हमारे पास, जिसको आप अगर शास्त्रों की भाषा में कहेंगे, एक है मल, एक है विक्षेप, एक है आवरण। मल डर्टीनेस, विक्षेप डिस्ट्रैक्शन, नंबर थ्री आवरण कवर। क्लियर? क्लियर है? एक बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है, अंदर में फिलामेंट है, ऊपर से कांच की कवरिंग है। जब स्विच ऑन किया तो जला कौन? कांच जला या फिलामेंट जला? प्रकाशित कौन हुआ? फिलामेंट प्रकाशित हुआ। और चूंकि प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, ट्रैवल करना, तो वो फिलामेंट जो प्रकाशित हुआ है, वहां से प्रकाश ट्रैवल करके आगे बढ़ रहा है, तो रास्ते में कांच आ जाता है, रास्ते में कांच आ जाता है। अब चूंकि कांच, सपोज मान के चल रहे हैं कि कांच क्रिस्टल क्लियर क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो प्रकाश के रास्ते में जो ये कांच आया है, प्रकाश उसको भेद कर बाहर आ गया, और तभी कमरे में हम प्रकाश का अनुभव करते हैं। ठीक है ना ये बात? लेकिन समझो, ये बल्ब ऐसे रखा है, किसी ने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है। अब इस बल्ब को चारों ओर मैं कालिख पोत देती हूं, मल, समझ में आ रही, डर्टीनेस। स्विच ऑन किया, प्रकाश आएगा, लेकिन अंदर फिलामेंट प्रकाशित हुआ है, अंदर फिलामेंट जरूर प्रकाशित हुआ है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। समझो, थोड़े जगह से मैंने कालिख ऐसे पोंछ के साफ कर दिए, तो जितने हिस्से में कालिख नहीं है, उतने हिस्से से आ रहा है, लेकिन फिर मैं वो बल्ब जो है ना, उसको मैं एकाग्र नहीं पकड़ रही हूं, बार बार ऐसे ऐसे जैसे कोई खेल खेल रही हूं, तो वो प्रकाश इतना काम का रहेगा, उसमें आप कुछ कर पाएंगे? क्या हो रहा है? ये विक्षेप हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और फिर मैं उसके ऊपर एक लाल कपड़ा कवर कर देती हूं, फिर उसके बाद दूसरा एक कपड़ा कवर करती हूं, लाल पीला काला कवर करते जाती हूं। स्विच ऑन है, आपको प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि फिलामेंट को स्विच ऑन किया है तो पावर सप्लाई मिली है, प्रकाशित हुआ भी है, लेकिन हाँ बोलिए जी। हाँ, तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आता है ना सबको? तो बात थी सुख दुख का कारण क्या, मन है क्या, बात ये थी। तो जी, ये जो कांच की कवरिंग है, इसको समझ लीजिए, ये चित्त है। जो फिलामेंट है उसको समझिए आत्मा है, जो स्विच ऑन किया उसको समझिए मैं सोल कॉन्शियस में हूं, अवेयर हूं, आई एम अ सोल, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। तो मेरा प्रकाश फैलेगा ना, परंतु ये चित्त में कालिक पोती हुई है तो क्या होगा? प्रकाश बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। तो बाहर से जीवन में कितनी भी अच्छी बातें हो तो क्या होगा? भीतर तो अंधेरा ही है, तो कुछ अच्छा लगेगा क्या? नहीं। कई बार हमने देखा है दुनिया में लोग, क्योंकि जीवन में परेशानियां तो बहुत है, तो उससे क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं मुझे तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला जाऊं। तो लोग कहते हैं मन में शांति नहीं है ना, तो जंगल में भी नहीं मिलने वाली है ना। तो मन में शांति बोलते हैं, आत्मा में शांति नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर मन में ही ये डिस्ट्रेक्शंस भरे पड़े हैं, चित्त के ऊपर आवरण चढ़े पड़े हैं, डर चढ़ी पड़ी है, आप जंगल में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, क्या होने वाला है? तो सारा प्रयास क्या करना है? हाँ, सारा प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि अब लोग कहते हैं कि बहन जी अब ज्ञान मिलने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूँ सोल कॉन्शियस में रहने की, वो स्विच ऑन रखने की। पहले हमारे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं थी, आत्मा थी, पर स्विच ऑफ है। जैसे देखो इतनी सारी लाइटें लगी पड़ी है, परंतु अभी रेड लाइट स्विच ऑफ है, जब चाहिए होगा तब ऑन करना पड़ेगा। तो कंट्रोल है ना स्विच ऑन और ऑफ का। तो लाइटें अपनी सुविधाओं के हिसाब से लगाई है कि कभी मुझे उसकी जरूरत होगी, कभी मुझे उसकी जरूरत होगी। तो लाइटें विद्यमान है, परंतु उसका सुख स्विच ऑन करने पर मिलेगा। तो हमको स्मृति भले ना भी हो कि इस आप शरीर को आत्मा चला रही है और मैं आत्मा अभिमानी होकर जीऊं, उस प्रकार से नहीं भी जी रही थी तो भी आत्मा ही इस शरीर को चला रही थी। समझ में आ रही बात? और अब जब मुझे ये अवेयरनेस क्रिएट की गई है कि अब सोल कॉन्शियस होकर जीना है, अर्थात मैंने खुद कॉन्शियसली स्विच ऑन किया है, और जब कॉन्शियसली स्विच ऑन किया है तो जैसे मैं स्विच ऑन करती हूँ रेड लाइट का, तो रेड प्रकाश मिलता है। तो अब मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं कॉन्शियसली अपने आप को आत्मा कंसीडर कर रही हूँ, कि मैं इस देह से अलग एक चैतन्य ज्योति आत्मा हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। और उसके साथ और भी क्या बताया गया आपको? उसके गुण क्या बताए गए आत्मा के? 7 क्वालिटीज बताई गई आपको? नहीं, सूर्य है, सूर्य भी प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश के साथ गर्मी भी देता है। चंद्रमा है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश के साथ शीतलता भी देता है। ऐसे आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, ज्योति फैलाती है, लेकिन ज्योति के साथ साथ वो 7 क्वालिटीज जो बताई, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, जो आपको सब बताया गया है, वो भी रेडिएट करे। तो जब हम योग अभ्यास में बैठेंगे, कंप्लीटली कॉन्शियस होंगे, कंप्लीट मन बुद्धि उसी पर एकाग्र है, तो पॉसिबल है कि मैं उस सुख को भी, प्रेम को भी, शांति को भी रेडिएट करूंगी। लेकिन अगर योग अभ्यास से उठ गई हूं, लेकिन आत्मा के ऊपर, वो चित्त के ऊपर मल विक्षेप आवरण तो है, और अब योग से उठने के बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूं, मैं उसको कैरी ऑन नहीं करती हूं, तो मैं वापस गुस्सा करना शुरू कर देती हूं। होता है ऐसा? नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? तो कैसे हुआ? अभी अभी तो मैंने शांति का अनुभव किया, अभी अभी प्रेम का, अभी अभी नफरत कहां से आ गई? क्लियर हो रही है बात? एक है कि मैं आज देखो, आज का जो ये था ना, क्या कहते हैं इसको, स्लोगन, क्या था स्लोगन, किसको याद है आज का स्लोगन, जो मुरली क्लास में गए थे, जो मुरली क्लास में गए थे, वे स्लोगन बताएंगे आज का? संकल्पों की एकाग्रता से श्रेष्ठ परिवर्तन फास्ट गति से हो सकता है। हम सब यहां एक मेडिटेशन रिट्रीट में किस लिए आए हैं? परिवर्तन के लिए आए हैं। कौन सा परिवर्तन? जो सेल्फ डिसएम्पावर हुआ पड़ा है, उसको एम्पावर करने आए। तो सेल्फ को एम्पावर करना, इजंट इट अ श्रेष्ठ परिवर्तन? एक श्रेष्ठ परिवर्तन है ना? लेकिन ये श्रेष्ठ परिवर्तन मेरे जीवन में फास्ट गति से आए, उसके लिए क्या चाहिए? संकल्पों की एकाग्रता चाहिए। जितनी ज्यादा एकाग्रता हम अपने भीतर भरेंगे, उससे क्या होगा कि जैसे जो नए भी है और पुरानों को तो पहले से ही पता है, आपको आत्मा का लेसन दिया, परमात्मा का लेसन दिया, आज कनेक्शन का भी लेसन मिला, तो कैसे कनेक्ट होना है वो भी पता चला। तो स्कूल के दिनों को याद कर ले, कॉन्वेक्स लेंस का एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कराया जाता है कि कैसे सूर्य की किरणें उस लेंस के फोकल पॉइंट पर जब फोकस की जाती है, तो वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, ऐसे बताया गया था। और उस हाई टेम्परेचर जो वहां जनरेट हुआ है, उसके कारण से उस लेंस के दूसरे साइड में कागज या तीली रखी है, वो जल उठती है। सीखा ना सभी ने स्कूल में इस चीज को? तो आज जो आप सभी को कनेक्शन की बात बताई गई, तो मन बुद्धि जितना पहले स्वयं में एकाग्र करेंगे, रात को बता रहे थे ना हम, सेम फ्रीक्वेंसीज गेट्स कनेक्टेड। तो स्वयं में मतलब सेल्फ में, सेल्फ माना क्या? SELF, स्पिरिचुअल एंटिटी इन लाइट फॉर्म, सेल्फ तो वही है ना, आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल एंटिटी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी कहो, एंटिटी कहो, जिसका स्वरूप क्या है, लाइट, दैट इज सेल्फ। उस सेल्फ पर मन और बुद्धि को क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और उस सेल्फ में जो उसकी क्वालिटी है, वहां पे मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं सिर्फ बोलना नहीं है, ये तोते की तरह बोलना नहीं, नहीं तो तोते ने पढ़ लिया तोता राम, हाँ तोते ने को कहा गया माली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। माली आया है, जाल बिछाया है, दाना डाला है, तोता फंसा है, फंस गया है, फिर भी रिपीट किया जा रहा है माली आएगा। तो कई बार हम भी, मैं आत्मा शांत स्वरूप तोता राम की तरह बोल रहे होते हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं तोता राम की तरह बोल, नहीं, ये बोलना वो सिर्फ एक स्विच ऑन करने के लिए है। मोबाइल में कितने सारे एप्स हैं, एक तो मोबाइल को ऑन करना होता है, मोबाइल के ऑन के बाद ऐप को भी ऑन करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता ऐप को ऑन, मोबाइल की बैटरी अगर फुल डिस्चार्ज हो जाए ना, तो कितने सारे हमारे मोबाइल में ऐप क्यों नहीं हो, कोई भी ऐप काम का नहीं। आप ऐप काम का तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं देने वाला है, आपकी सेवा में हाजिर होने की तो बात बहुत दूर है, आपको दर्शन भी नहीं देगा। आप ब्लैंक स्क्रीन पे हजारों बार क्लिक क्लिक मार दो, आपकी स्क्रीन फूटने के चांस है, पर ऐप के दर्शन देने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो मोबाइल को भी ऑन करना पड़ता है, फिर ऐप को भी ऑन करना पड़ता है ना। तो ये ऐप ऑन करने के लिए है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब ऐप माना क्या है जरा बता दो, मोबाइल में ढेर सारे ऐप एप्लीकेशन, हाँ अगर उसके बेसिक में चले जाएं, रूट में चले जाएं, एप्लीकेशन इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ कमांड्स, अ सीरीज ऑफ कमांड्स, वही होता है ना, और कुछ नहीं होता। तो उसको कमांड दिया गया है कि इस रीति से आपको फंक्शन करना है। ऐसे ही शांति माना क्या, जब हमने कहा शांति का ऐप है अंदर में, प्रेम का ऐप है, खुशी का ऐप है, मतलब क्या, क्योंकि आत्मा अपने आप में क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी, और एनर्जी का स्वभाव क्या, वाइब्रेट होना। एनर्जी कैन वाइब्रेट इन नंबर ऑफ वेज, आपके पास में हारमोनियम लाके दे दिया, कई सारे बटन है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा कॉम्बिनेशन करके कौन सी म्यूजिक क्रिएट करते हो। नंबर ऑफ म्यूजिक यू कैन क्रिएट ना, ऐसे एनर्जी जिसका स्वभाव है वाइब्रेट होना, इट कैन वाइब्रेट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। पर जो सेवन क्वालिटीज बताई गई कि आत्मा की सेवन क्वालिटीज है, जिसको हम मूल संस्कार कहते हैं, जिसको उसकी इनेट क्वालिटी कहते हैं, स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आम बनाते थे, वो पहाड़ की सीन बनाते थे, घर सूर्य आदि, फिर उसको कलर करना होता था, तो थोड़ा बहुत कलर की भी नॉलेज दी गई थी हमें कि सम कलर्स आर प्राइमरी एंड सम कलर्स आर सेकेंडरी टर्शरी, वो तो आगे आगे। तो प्राइमरी कलर माना ओरिजिनल कलर, और सेकेंडरी माना उन प्राइमरी को डिफरेंट प्रपोर्शन में मिक्सअप करके वैरायटी ऑफ सेकेंडरी कलर्स डिराइव किए गए, इसलिए डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं उनको, भाई दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी, by mixing them in a variety proportion. ऐसे आत्मा के अंदर original, innate quality जो ये seven बताई, मतलब आत्मा सात पैटर्न उसके डिफॉल्ट है वाइब्रेट होने के, और वो सात जो पैटर्न है डिफॉल्ट उसके वाइब्रेट होने के, तो हर वाइब्रेशन एक फीलिंग देगा ना आपको। हर वाइब्रेशन क्या करेगा आपको, आप एक गीत बजा रहे हैं, गीत सुनने के बाद आपने कहा ओ ये गीत सुनने के बाद कितना शांति का एहसास हुआ। कोई एक दूसरा गीत बजा, अरे गीत तो ऐसा बजा है पैर थिरकने लगे मेरे तो, नाचने का मन कर रहा है मेरा तो। कोई एक लेक्चर सुन लिया मतलब बजा तो कहा अच्छा ये बात ऐसी थी, पहले तो मैं ऐसे समझता था, अब मुझे सच्चाई का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अभी मुझे अवेयरनेस आई। कोई एक लेक्चर सुनेंगे कि जिसको सुनते ही अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ था, मेरे में हिम्मत आ गई, हौसले बुलंद हो गए। अब जो सुना, चाहे वो गीत था, चाहे वो लेक्चर था, चाहे उसने शांति का एहसास करा दिया, चाहे खुशी का पैर थिरका दिए आपके, चाहे आप में हिम्मत ला दी, चाहे आपको बोध करा दिया, वो सब वाइब्रेशन ही है ना। सब तो वाइब्रेशन है और क्या है। आप जितने भी क्लासेस हुए हैं ना, जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, वो सब क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ही हो रहा है, बाकायदा शब्द छप रहे उधर, वो शब्द छप रहे हैं, ऐसा ऐसा छप रहा है और कुछ नहीं छप रहा है। तो फीलिंग किसने दी, ऐसे ऐसे ने दी ना, क्लियर हो रही है बात। वाइब्रेशन किस प्रकार का है, उस प्रकार से एक फीलिंग जनरेट होगी, और उस फीलिंग को हमने अपने रीति से नाम दिए कि ये फीलिंग माना शांति होती है, ये फीलिंग माना खुशी होती है, ये फीलिंग माना आनंद होता है, ये फीलिंग माना प्रेम होता है, और हमने फिर उस प्रकार से उसमें नाम लिख दिया उस गाने के आगे शांति, जिसमें पैर थिरक रहे थे खुशी, कि जब खुशी का प्रसंग आएगा ना तो हम वो खुशी वाली फाइल को क्लिक करेंगे और सब लोग डांस करने लग जाएंगे। तो समझ में आ रही है बात, हम क्या बात बता रहे थे, आत्मा की सेवन क्वालिटीज की बात, कि वो सेवन ऐप मीन्स सेवन वाइब्रेटिंग पैटर्न, एक एक पैटर्न एक एक फीलिंग दे रहा, उस एक एक को फीलिंग का नाम दे दिया। अब वो इनेट है, लेकिन रास्ते से जब वो गुजर रही है, चित्त बताया ना, अंदर फिलामेंट बाहर कांच, उसको हमने चित्त बताया। अब ये यहां से गुजर रही, मैंने ऐप को क्लिक किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा की जो एनर्जी है उस रूप में वाइब्रेट हो रही है, जो मुझे क्या देगी, शांति की फीलिंग देगी, तो शांति वाइब्रेट होगी। अब मैं उस शांति की फीलिंग में आऊं और तब फिर बाबा को याद करूं, परमात्मा को, उसकी तो ऑलरेडी शांति की फ्रीक्वेंसी है ना, है कोई डाउट कि वो भी अशांत होता है कभी, वो भी कभी नफरत की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है, नहीं। तो मैं जब ऐसी फ्रीक्वेंसी में आने के बाद उसको कनेक्ट करूंगी यानी याद करूंगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या हो जाएगा, हम कनेक्ट हो जाएंगे। अब वो सिर्फ प्रकाश स्वरूप नहीं, जैसे मैं सिर्फ प्रकाश स्वरूप नहीं हूं, प्रकाश के साथ साथ सेवन क्वालिटीज उसकी भी तो है। तो अब मैं चूंकि कनेक्ट हो गई हूं तो वहां से भी आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं तो बैटरी हूं ना, मैं तो पावर बैंक हूं, वो तो क्या है, पावर हाउस है, तो वहां से मेरे तरफ फ्लो होगा या मेरे से उसकी तरफ फ्लो होगा, वहां से एनर्जी फ्लो होगी तो शक्ति भी आएगी, प्रेम भी आएगा। तो यहां पर चित्त पर हाई एनर्जी जनरेट नहीं हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? और चित्त के इस पार जो इतना सारा वो कचरा भरा पड़ा है, कालिक पोती हुई है, वो जलेगी या नहीं जलेगी? समझ में आ रही है बात? वो जलेगी, तब जाके रास्ता पूरा क्लियर होगा, तब जाके हम सदा आनंद की स्थिति में होंगे, क्योंकि उस सत चित आनंद का रास्ता खुला है। सूरज आसमान में चमक रहा है, लेकिन रास्ते में उसके जो सूरज की रोशनी मेरे तक पहुंचती है, वो जो रास्ता है, वहां पे काले घने बादल आ गए हैं। आएगी मेरे पास उसकी रोशनी? नहीं आएगी। तो ये जो बात थी कि सुख दुख का कारण मन है, जी हाँ, हम क्या करते हैं जब हम पहली बार आत्मा इस शरीर में आती है, चित क्रिस्टल क्लियर क्लीन होता है। लेकिन इस जर्नी में हमको क्या क्या मिला हुआ है? हमको शरीर के नाम पे इंद्रियां भी मिली हुई है, हमको मन भी मिला हुआ है, हमको बुद्धि भी मिली हुई है, मिला है नहीं मिला है? तो इंद्रियों के द्वारा हम कुछ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इस आंख रूपी इंद्रिय से मैंने देखा, ये बहन जी इस समय अपनी ओढ़नी को देख रही है, तो सही देखा ना मैंने? पर ये अंदर गया या नहीं गया? गया, गया। चित्त के ऊपर लेयर्स चढ़ेगी, जो हमने बताया था ना कि बल्ब को पकड़ा है, एक तो मिट्टी भी लगी है, फिर हिला भी रहे हैं और कपड़े के ऊपर कपड़े चढ़ा भी रहे हैं, तो बाहर प्रकाश नहीं आएगा। तो एक तो इंद्रियों के द्वारा अंदर भरा जा रहा है, तो कहां भरा जा रहा है? उसी चित्त पे तो समाएगा ना सब कुछ। बल्ब के ऊपर जो भी चढ़ रहा है तो उसी के ऊपर चढ़ रहा है ना, उस कांच की कवरिंग के ऊपर। तो इंद्रियों के द्वारा जो हासिल हो रहा है वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, फिर मन कुछ देखने के बाद थॉट्स क्रिएट कर रहा है, वो उसके ऊपर जमा हो रहे हैं, फिर बुद्धि विजुअलाइज कर रही है, वो उसके ऊपर जमा कर रहा है, फिर समझो कि जो कुछ भी मैंने, ये तो अभी प्रेजेंटली जो सोच रही हूँ, प्रेजेंटली विजुअलाइज कर रही हूँ, प्रेजेंटली आंख से जो देखा, सिर्फ एक तो मैंने एग्जांपल सिर्फ एक आंख का दिया, वरना पांच पांच इंद्रियां है मेरे पास, सबसे जा रहा है। और फिर जो पहले कभी देखा था उसको मैं रिवाइंड कर रही हूं, और निद्रा में भी मैं जाती हूं। तो जो इंद्रियों के द्वारा नॉलेज जा रहा है वो रियल नॉलेज कहेंगे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। उसको दिख रहा था ना मुझे, अभी आप कर रहे थे ना ओढ़नी को कुछ कुछ, तो अगर मैं बोला कि ये बहन जी अभी ओढ़नी को देख रही थी, मैंने झूठ बोला था क्या? इट इज द रियल नॉलेज, कोई रियल इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। एक मन क्रिएट कर रहा है थॉट, उसके अनुसार इंफॉर्मेशन अंदर तैयार हो रही है, फिर बुद्धि विजुअलाइज कर रही है, उसके अनुसार इंफॉर्मेशन जा रही है। फिर हम जो निद्रा में चले जाते हैं, तो निद्रा में क्या है? नो इन्फॉर्मेशन। अगर गहरी निद्रा है तो नो इन्फॉर्मेशन, नो नॉलेज। नो नॉलेज की स्थिति में भी क्या है? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं ना, तो हम उठने के बाद क्या बोलते हैं? आज मैंने इतनी गहरी निद्रा की है ना, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बोलते हैं। उस सुकून का, उस राहत का भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और ये तो मैंने कहा कुछ रियल, कुछ झूठे भी जा रहे हैं। समझ में आ रही बातें? और उसके आधार से फिर जब जीवन में कोई बात आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो मैं उसके आधार से उनको इंटरप्रेट करना शुरू कर देती हूँ। जिसको कहते हैं ना, मैन शुड नॉट हैव प्रेजुडाइसेस। अगर होंगे, जैसे मैंने कल, आज ही शायद कुछ आवाज आई थी यहाँ से नीचे, पता नहीं मैंने कहाँ से सुना कि जब कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को समझने जाओ तो ओपनली दिमाग खुला रखो और सुनो, अपनी पूर्व धारणाओं को साइड में रखो, तब जाके जो हमें सुनाया जा रहा है उसको हम अच्छी रीति से समझ पाएंगे। वरना तो जो अंदर भरा हुआ है उसी की मिक्सचरिटी उसमें कर देंगे, तो समझाने वाले ने, सुनाने वाले ने जो बताया, हमने उसका रूप रंग सब कुछ चेंज कर दिया। ये ऐसा हुआ कि दूध वाले ने अपनी दूध गाय को दुहकर बिल्कुल फ्रेश ताजा दूध लाया और अपने श्रेष्ठ पात्र में लेकर आया और हमारे दरवाजे पे आके घंटी बजाई। हम अपना पात्र लेकर आए और उसने हमारे पात्र में डाला, पर हमने पात्र की जांच नहीं की। फट गया तब पता चला था, अरे ये तो खटास वाला बर्तन था, आया हुआ दूध तो अच्छा क्वालिटी का था, पर मेरे ही पात्र में ही जो खटास भरी थी उसने अच्छे को भी खराब कर दिया। ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी बातें आती है वो अपने आप में न तो सुख है न तो दुख है। समझ में आ रही बात? वो अपने आप में न सुख है न दुख है। मेरी अंदर की स्थिति क्या है उसके आधार से मेरे सामने आई हुई बात मुझे या तो सुख प्रतीत कराएगी या तो दुख का एहसास कराएगी। प्रश्न यही था, क्या सुख दुख का कारण मन है? आ गया आंसर? आंसर आया? हाँ, तो आंसर आ गया, क्योंकि हमने रात को यही कहा था कि इस प्रश्न को हम सेशन के रूप में ले लेते, क्योंकि इतना इजी नहीं था वो, और वहां समय की लिमिटेशन थी, और यहाँ सेशन में पूरा एक घंटा इसको डिवोट है, तो हम अलग अलग रीति से बता के इसको क्लियर कर सकते हो। सचमुच क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ सभी को कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है उसका कारण हमारे भीतर में क्या भरा हुआ है, हमारी भीतर की स्थिति क्या है। इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि पांच व्यक्ति खड़े थे, बॉस ने आकर सबको इकट्ठी डांट लगाई, लेकिन पांचों एक जैसे दुखी नहीं हुए। हाँ, एक दो तो हंसी देते। तो ये एग्जांपल भी क्या शो कर रहा है? उसको डांटना था, उसने अपना काम किया, लेकिन ये जो पांच जिनके पास ये डांट आई, वो अंदर में जो स्थिति थी उसके अनुसार रिएक्शन हुआ है ना। वो अपने हर्षित मुक्ता के मूड में था, वो अपने झोली मूड में था, कॉमेडियन मूड में था, इसकी तो आदत है, रोज डांटता है। लेकिन एक व्यक्ति ने सीरियसली पकड़ लिया, इतना अच्छी से हम काम करते हैं, इतना घंटे घंटे लगाते हैं, परिवार में बोला जाता है कि ये लाना, वो भी सब भूल भुला के पूरा यहाँ पे केंद्रित करते, ऊपर से इतनी डांट देता है। तो अपनी मन की स्थिति ही परिस्थितियों में हमको सुख और दुख का अनुभव करा रही है। इसीलिए कहा, कमीजे उतारो तो सुखी बनोगे। कमीजों को उतारो, अंदर में ये रिएक्शन करते करते ही जो हमने कहा ना कि आत्मा के ओरिजिनल एप्स सुख शांति प्रेम के हैं इनेट, लेकिन अक्वायर्ड कौन से ऐप है आत्मा के पास? गुस्सा, ईगो, ये अक्वायर्ड है ना। कैसे अक्वायर्ड हुए इसको भी समझ लेते हैं। जो गीत बजा, जिस गीत को सुनकर साइलेंस का अनुभव हुआ, मतलब एक वाइब्रेटिंग पैटर्न उसका वहां पे रिकॉर्डेड था और जब हमने उसको प्ले किया तो उसी रूप में वो वाइब्रेट फिर से हुआ और उसी प्रकार से वो आवाज निकला और उसने शांति की अनुभूति कराई मुझे। लेकिन जो वाइब्रेट होने के लिए उसको एनर्जी सप्लाई मिलना चाहिए, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी मैं कम कर दूं, तो क्या वो उसी रूप में वाइब्रेट होगा? उसका वाइब्रेटिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट होगा, जिसको कहते विकृत होगा, जिसको ही कहेंगे विकार आ गया। तो हम क्रोध को क्या बोलते हैं? विकार बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो भी, इनको क्या बोलते हैं? विकार। तो यहाँ पे साइलेंस वाला म्यूजिक था, गीत था, लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिला, तो जो वाइब्रेटिंग पैटर्न रिकॉर्डेड था वो वाइब्रेटिंग पैटर्न डिस्टॉर्टेड हुआ, विकृत हुआ, और इसलिए अब जो उसमें से आवाज आई उसने शांति का अनुभव नहीं कराया, बल्कि जो थोड़ी बहुत शांति थी उसको भी भंग कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास भी जो 7 पैटर्न्स हैं, इनको समय के साथ, क्योंकि लंबे समय से यूज हो रही है ना बैटरी ऐप, मोबाइल को लंबे समय से यूज करो तो बैटरी डिस्चार्ज के कगार पर आएगी या नहीं आएगी? और डिस्चार्ज के कगार पे आके फ्लैट, परंतु इसकी एक विशेषता है, कभी कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं होती है, और इस कारण से इसके वाइब्रेटिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट 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 होते होते, पहले थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ था तो हमारे गुस्से का लेवल थोड़ा था। लोग कहते हैं ना, पहले मैं इतना गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हारे पास रह के मैं गुस्से वाली हुई, पूछ लो मेरे मायके वालों से मैं कितनी शांत थी। बोलते कई बार, बोलते नहीं बोलते? हाँ, सिर्फ मायके वाली बात नहीं, बहन वाली नहीं, भाइयों पे भी लागू है। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी सप्लाई, हाँ, आप ये नहीं बता रहे कि आपने अपने आप को चार्ज नहीं किया है, आप ब्लेम उधर कर रहे हो, आपने अपने कांच को साफ नहीं रखा है, सामने वाला। अभी दूध वाले को जाके डांट रहे, अगर मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ ना कि मेरा बर्तन खटास वाला था, तो कल जब दूध वाला आएगा ना तब तो डांटेंगे, पर सारा दिन उसके लिए क्या क्या बोला होगा हमने। तो और खराब हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हमें इन बातों का भी ध्यान देना है, हमें लॉजिक समझ लेना चाहिए, और अब हमें सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने की प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। मन बुद्धि इतनी एकाग्र कर ले कि उसको भी याद करे, उस पे भी मन टिक जाए, और इतना टिक जाए कि अब चिंतन भी खत्म हो जाए। ये तो चिंतन पहले कर रही हूं ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं उस साइलेंस के शांति के वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रही हूँ, फ्रिक्वेंसी पे आ रही हूँ, उससे कनेक्ट हो रही हूँ, उसके बाद ये चिंतन भी खत्म हो जाए, आप एकदम से साइलेंट स्थिति में आ जाए। तब जो मिरेकल होगा, तब जो वहां से एनर्जी आएगी आपके पास, वो आपको, जैसे कल बात हो रही थी ना, आप समान नहीं बनाते हैं बाहर वाले लोग, और ब्रह्मा कुमारी इसमें आप समान बनाया जाता है। तो जब हम एकदम शांत सरेंडर हो जाएंगे उसके साथ कनेक्ट होके, सरेंडर, मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, बस मैं तेरे पास आ गया ना, कनेक्ट हो गया ना, बस तेरे सानिध्य को अनुभव करूं, शांत हो जाऊं, उसकी एनर्जी हमारे ऊपर ऐसे काम करेगी कि वो अपनी जिस स्थिति में है वो तो निर्विकारी है ना, मुझे भी निर्विकारी बना देगा। इसके पीछे का भी थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कर देती हूं। इतनी शांति हमें योग में रखनी चाहिए, कंप्लीट बार 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 संकल्प ही करते जा रहे, नहीं, डेफिनेटली शुरू में गाड़ी चलाने के लिए वो दबाना पड़ता है, उसके बार बार दबाना पड़ता है क्या बाद में, एक बार गाड़ी रन हो गई ना, तो संकल्प शुरू करने के लिए चाहिए, फिर मौन में आ जाइए। इस मौन के बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, और चमत्कार इन द सेंस अंधश्रद्धा के रूप में नहीं, इसके पीछे साइंस है, संगीतज्ञों का अनुभव है। अगर एक कमरे में जिसके दरवाजे खिड़की बंद कर दिए गए हैं और कमरा पूरा खाली है, और एक कोने में एक वीणा रख दी जाए, दूसरे कोने में दूसरी वीणा, और एक कोने में जो वीणा रखी है उसको फिजिकली टच करके उसके तारों को छेड़ा जाए, तो क्या होगा, संगीत की लहरियां, संगीत गूंजेगा ना, किसी विशेष एक्सपर्ट ने उसको बजाया है, छेड़ा है, तो सुंदर सी संगीत लहरियां उठेगी और हवा में पास होते हुए वो जो दूसरी वीणा रखी हुई है उसके तारों को भी छेड़ देगी, और वैसा ही संगीत वहां से भी गूंजेगा, जबकि उसको फिजिकली नहीं छेड़ा गया है। ये संगीतज्ञों का प्रूवन एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट अ कल्पना। अब इस चीज को और आगे देखें कि कैसे स्पंदन यहां से जाके उधर काम कर रहा है। इसीलिए का विशेषता क्या थी वहां की, कमरे में कुछ सामान नहीं हो, कमरा खाली हो, कमरा एकांत हो, समझ में आ रही ना, मौन की बात है ना, ये काम करेगा। क्योंकि सामान अगर होगा ना, वो जो लहरियां उठ रही उसको टकरा के उस लहरियों को डिस्टॉर्शन हो जाएगा, वो जो वाइब्रेटिंग पैटर्न है किसी किसी से टकरा कर क्या हो जाएगा, उसमें विकृति आएगी या नहीं आएगी, समझ में आ रही बात। तो एक बार एक वैज्ञानिक था जिसको राजा ने निमंत्रण दिया, उसके पास वो एक दो रात का मेहमान के रूप में गया था, और राजा मतलब उस किले पे ठहरा, उसको जिस कमरे में रहने के लिए स्थान दिया गया उस कमरे में एक दीवार पर दो घड़ियां लगी हुई थी, और जब उसका ध्यान गया ना उस घड़ियों पर, तो उसने क्या नोटिस किया, ये बात 150-200 साल पहले की है, तो उन दिनों में पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी, तो उसने देखा कि इन दोनों में इतनी सामंजस्यता, उसका पेंडुलम जिस पोजीशन पे है दूसरी घड़ी का भी पेंडुलम उसी पोजीशन में, उसका मिनट काटा जिस पोजीशन पे है इस घड़ी का भी मिनट काटा उसी पोजीशन पे, उसका सेकंड काटा जिस पोजीशन पे इसका भी सेकंड काटा उसी पोजीशन, इतनी हार्मनी ऐसे कैसे हो सकता है। उसको लगा या तो ये जिसको क्या कहते कोइंसिडेंस, कोई कोइंसिडेंस होगा, या तो फिर इसके पीछे कोई साइंस काम कर रही होगी। अब क्या है, इस सच्चाई को जानने के लिए उसने क्या किया, रात को पर्पसली एक घड़ी को स्टॉप कर दिया पर्पसली। और अगले दिन जब सुबह उठा तो जिस घड़ी को स्टॉप किया था उसको वापस स्टार्ट किया, और डेफिनेटली टाइम गैप काफी आ गया तो टाइम को भी सेट किया, लेकिन 3-4 मिनट का पर्पसली डिफरेंस रखा, क्योंकि उसे फाइंड आउट करना था ना कि ये कोइंसिडेंस है या ये साइंस है। तो उसने देखा कि जो 3-4 मिनट का फासला उसने रखा था, 24 घंटे होते होते वो फासला खत्म हो गया और दोनों एक सामंजस्य में आ गए। और तब उसको लगा ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे साइंस है। और आया था राजा के पास एक दो दिन के मेहमान बनकर, लेकिन जब साइंटिस्ट होते हैं ना तो जब कोई धुन सवार होती है तो उसको वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। कहते पूरा 1-1.5 महीना वहां रहा वो फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए, और उसको फाइंड आउट हुआ भी। और उसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करता था रात में, अच्छा विशेषता क्या थी उन दो घड़ियों की, एक घड़ी बड़ी है साइज में, दूसरी घड़ी छोटी है साइज में। अब वो बड़ी घड़ी के पास में जाता है, दीवार पर कान लगाता है, उसका जो पेंडुलम दोलन जो आवाज कर रहा है, जो कंपन पैदा कर रहा है, उसको सुन रहा है कान लगा के, और वो महसूस कर रहा है ये कंपन यहां से चलकर उस दूसरी घड़ी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसका ही इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो बड़ी घड़ी है ये छोटी घड़ी, वैसे भी कहते हैं बड़ों के आगे छोटों का क्या चलेगा, तो वो बड़ी घड़ी का इन्फ्लुएंस इस पर ऐसा कि वो बड़ी घड़ी की जो स्थिति है उसको अपनी वाली स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। और तब उसको नाम दिया सामंजस्यता, हार्मनी। बाद में कहते हैं बहुत जो साइंटिफिक वे में पूरा वो जो क्या बोलते थीसिस बनाना और वो करना, उस प्रकार की रिसर्च नहीं हुई थी। बाद में कहते अभी 40-50 वर्ष पहले कार्ल गुस्ताव जुंग करके एक साइंटिस्ट नहीं मनोवैज्ञानिक, वो था वैज्ञानिक और उसने इसी चीज को पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड प्रदान किया, रिसर्च किया, वो था मनोवैज्ञानिक, और उसने इसको नाम दिया सिंक्रोनिसिटी, और कहा कि ये सिंक्रोनिसिटी का जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, सिर्फ वीणा के केस में लागू नहीं होता है, सिर्फ घड़ियों के केस में लागू नहीं होता है, जीवन के हर डायमेंशन में लागू होता है। तो यही सिंक्रोनिसिटी, वो परम आत्मा और मैं आत्मा अगर दोनों पास पास बैठ जाए और ये आत्मा शांत सरेंडर हो जाए, सिर्फ सानिध्य में रहे, तो उस बड़े मतलब परम आत्मा से आने वाली ऊर्जा का इन्फ्लुएंस इस आत्मा पर ऐसा होगा जितनी क्लीन और क्लियर पवित्र ये परमात्मा है, इस आत्मा को भी उतना प्योर, उतना प्रेम पूर्ण, उतना शक्ति पूर्ण बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो यही तो आज योग सिखाया, तो इसका महत्व समझते हैं कितना है। सिंपल सी मेथड है, आपको जस्ट इंजन स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ संकल्पों का सहारा लेना है, उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को लाना है, उस फ्रीक्वेंसी पे आके अपने आप को उसके धाम में लेके जाना है, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसके सानिध्य में बैठकर अब चिंतन भी खत्म कर दो, बस उसके सानिध्य में बैठ जाओ, वो आपके ऊपर ये करिश्मा करेगा और आप देखेंगे जो मेरे इतने सारे प्रयासों से बाहर की दुनिया में जिसको मैं ढूंढ रहा था कहीं से सुकून मिल जाए, कहीं से प्रसन्नता मिल जाए, लेकिन हुआ उल्टा, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी कहा सुखी रहने के लिए कमीजे उतारो, यहां तक कि संकल्पों को भी स्टॉप दे दो, शांत हो जाओ, मौन में आ जाओ, और सदा ही फिर वो एनर्जी आपकी भीतर, तो आनंद है ना, सत्चित आनंद, और वो यहाँ के रास्ते भी पूरे क्लियर हो जाएंगे। कांच जो है बिल्कुल मैंने पूरा साफ कर लिया है, विक्षेप भी निकाल दिया। विक्षेप निकालना माना क्या, कैसे डिस्ट्रेक्शन आता है। यहाँ पर अगर मैं बैठी हूँ सुबह से, मैं स्नान पानी सुबह किया था, फिर कहीं गई थी जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी थी और सीधा मेरा लेक्चर था, तो मैं यहाँ आ गई, तो बैठे बैठे मुझे खुजली नहीं होगी इधर से उधर, तो इसको ही तो विक्षेप बोलेंगे ना, विक्षेप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ऐसे ही अंदर में भी जो डर्ट भरी है वो ही तो विक्षेप पैदा करेगी या नहीं करेगी, वही तो करेगी ना। लेकिन जब उसके पास बैठेंगे वो सारा मल निकालेगा, तो विक्षेप भी हटेगा, तो आवरणों को भी तोड़ेगा, तो रास्ता साफ हो जाएगा, आनंद का फ्लो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और वो आनंद का फ्लो करुणा के रूप में आएगा कि जैसे मैं आनंदित हुआ हूँ, दुनिया का हर इंसान, हर आत्मा आनंदित हो जाए, तो उस सुखी रहने वाले जिसके पास कोई कमीज नहीं थी, वो यही कह रहा था उस समय, जिस समय वो सैनिक उसके पास गए थे कि हे भगवान, जैसे तूने मुझे सुखी बनाया है, ऐसे दुनिया का हर इंसान सुखी हो जाए, हर इंसान बीमारियों से मुक्त हो जाए, हर इंसान के जीवन में मांगलिक मंगलकारी घटनाओं के वो साक्षी बने, ऐसा सबका जीवन, ये क्या है, करुणा नहीं है ये? इसी को कहते हैं करुणा, इसी को कहते हैं मातृ प्रेम, और यही हमारा ब्रह्मा कुमारियों का इस वर्ष का थीम है, ईयर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। तो जब इतने सारे आत्माएं तैयार हो जाएंगे और ये सब अपने अपने स्थान पर जाएंगे, तो कितनी सारी, आप एक एक की करुणा से कितनी सारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा, और ऐसे सब का कल्याण होते होते ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना तुमसे